नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
अगर आज का दिन देखिए शिवेंद्र, तो भारत के लिए काफी अच्छा रहा अगर क्रिकेट की बात करें, या फिर अगर हम बैडमिंटन की बात करें, जो पूरे सत्र की शुरुआत इतनी अच्छी हुई।
जी हाँ, मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट है और इंडिया के लिहाज से अच्छी बिगनिंग हुई है, क्योंकि एक देखिए पीवी सिंधु बहुत दिन बाद कोर्ट पे वापस आई है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। सात्विक चिराग वहां खेल रहे हैं, लक्ष्य सेन खेल रहे हैं, आयुष शेट्टी खेल रहे हैं, और सबने जीत से शुरुआत की है। ऑफकोर्स कुछ लोग हारे भी हैं, जरूर हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन गुड बिगनिंग, और जैसे कहते हैं ना, वेल बिगनिंग इज हाफ डन, वैसे यहां तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अच्छी शुरुआत है। और क्रिकेट में साउथ अफ्रीका पर 3-0 क्लीन स्वीप अंडर 19 में, सोने पर सुहागा है क्रिकेट के लिहाज से। अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उस लिहाज से भी अच्छा रिजल्ट है ये।
बिल्कुल, तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेनोनी में भारत ने तीसरे और अंतिम अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हराया। पीवी सिंधु और सात्विक चिराग ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत जीत से की। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, और महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंडर 19 क्रिकेट की, बेनोनी में भारत ने तीसरे और अंतिम अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 233 रन से हरा दिया है। भारत के 394 रन के लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 160 रन पर ही सिमट गई। किशन कुमार सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद इनान ने भी 2 विकेट झटके। और इससे पहले वैभव सूर्यवंशी और एरॉन जॉर्ज की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 388 रन बनाए थे। इसके अतिरिक्त भारत को 5 पेनल्टी रन का भी इजाफा हुआ, और इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप कर लिया है।
बहुत बढ़िया रिजल्ट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था जया, कि अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है, और हालांकि वैभव सूर्यवंशी वहां पर टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन उन पर बड़े लंबे समय से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और ये आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, 127 रन बनाए हैं, ये अंडर 19 में उनकी एक जो सबसे बेहतरीन पारियां हैं उनमें शामिल है। और दिसंबर में, पिछले साल ही 12 दिसंबर को उन्होंने 171 रन बनाए थे यूएई के अगेंस्ट, और जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 143 रन की पारी खेली थी। तो जिस अंदाज में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि हम अक्सर जब क्रिकेट के बारे में आजकल बात होती है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फील्डिंग की बात बहुत कम होती है और बॉलर्स की बात भी कम होती है, लेकिन वो बल्लेबाज जो ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाते हैं उनकी ज्यादातर बात होती है। तो अब जब परफॉर्मेंस हो रहा है तो बात होनी भी चाहिए। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली के बाद अब वो दूसरे नंबर पर हैं, और नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से मुझे अगर ठीक से ध्यान आता है, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, विराट कोहली ने शायद उनसे दुगने मैच खेले हुए हैं, लेकिन सिर्फ 5 रन का अंतर रह गया है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके लिहाज से भारत के लिए एक बहुत अच्छा परिणाम है, और साउथ अफ्रीका को वहां पे जाकर के उनके देश में क्लीन स्वीप करना किसी भी फॉर्मेट में ये आसान नहीं है। मैं कहूंगा कि कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस है और इंडिविजुअल ब्रिलियंस उसमें बहुत अच्छे से समाहित हुआ है।
बिल्कुल, अभी जैसा कि आप बात कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी की, हालांकि वो वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और कप्तान होते हुए जो संयम दिखलाया है, तो इनकी बात हो रही है। इसके अलावा कौन से उभरते चेहरे आपको नजर आ रहे हैं अंडर 19 में?
अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखिए, अभी कुछ दिन पहले भारत ने सीरीज भी खेली थी, मात्रे वहां पर टीम के कप्तान रहेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा थोड़ी सी कम होती है, कई बार ऐसा भी लगता है कि जिस खिलाड़ी का चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और जब वो डी डे आता है या परफॉर्मेंस वाली बात आती है, तब कहीं अगर वो ब्लिप कर जाए, फॉर्म डिप कर जाए, तो बड़ी निराशा होती है। तो बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप टीम को एज ए यूनिट प्रॉस्पर करने दें, उनको आगे बढ़ने दें, और जब डी डे आए तब वो अच्छा परफॉर्म करें तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करने के।
बिल्कुल, अब बात क्रिकेट की कर रहे हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी की भी बात करते हैं, जहां एलीट ग्रुप के मुकाबले में कल महाराष्ट्र, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सौराष्ट्र समेत कई टीम खेलती नजर आएंगी। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक अपने अपने ग्रुप में शीर्ष पर बने हुए हैं। अगर इस मुकाबले में अब तक के प्रदर्शन को देखें तो देवदत्त पडिक्कल ने 100 की औसत से 605 रन बनाकर दूसरे नंबर पर काबिज हैं। इससे पहले देवदत्त लगातार टीम से इन एंड आउट होते रहे हैं, तो ऐसे में अब उनका ये प्रदर्शन भारतीय टीम में जगह पक्की कर सकता है।
देखिए, भारतीय टीम में जगह पक्की करने के बारे में तो मुझे लगता है ना तो प्लेयर को ना सेलेक्टर को किसी को भी कुछ पता नहीं होता। वो जब सेलेक्टर्स बैठते हैं एनालाइज करते हैं तब, और वो भी डिसीजन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड भारतीय टीम में किसी भी फॉर्मेट में जगह बनाना आज की डेट में, क्योंकि जो बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास है उसके लिहाज से बहुत ही मुश्किल है, और जो भी टीम में शामिल है वो कमेंडेबल उसका परफॉर्मेंस है। देवदत्त पडिक्कल का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं कि कंसिस्टेंसी जब सेलेक्टर्स बैठते हैं तो शायद एक जो परफॉर्मेंस में निरंतरता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, फिर ये ध्यान देते हैं कि आज की तारीख में कौन प्लेयर पिछले मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्म करा है, कंसिस्टेंसी। तो शायद देवदत्त के साथ ये एक इशू है कि डिस्पाइट बीइंग सच अ टैलेंटेड प्लेयर, उनको वो जो मकाम, शायद वो जगह जो हासिल करना चाहते थे, नाम मिला है लेकिन मौके उतने नहीं मिले जितने शायद मिलने चाहिए थे।
बिल्कुल, और इस बीच बिहार ने कल प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर को 6 विकेट से हराकर एलीट ग्रुप में जगह बना ली है। बिहार अगले सत्र के विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में खेलेगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
झारखंड के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मणिपुर 47 ओवर और 5 गेंद में 169 रन पर ही सिमट गई। मणिपुर के लिए उलेनियाई ख्वाइराकपम ने 112 गेंदों में 7 चौकों के साथ सर्वाधिक 61 रन बनाए। बिहार की ओर से शब्बीर खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 ओवर में 30 रन दिए और 7 विकेट अपने नाम किए। आसान लक्ष्य का पीछा करते हुए बिहार की टीम ने 31 ओवर और 2 गेंद में जीत दर्ज कर ली। आयुष लोहार ने 11 चौकों के साथ 75 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। शब्बीर की घातक गेंदबाजी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में जगह पक्की कर ली। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
इधर T20 विश्व कप ट्रॉफी आज अभी नेपाल में है, टूर पर है, और काठमांडू स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बौद्ध स्तूप में आज आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति पौडेल ने विश्व कप ट्रॉफी को नेपाल लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस दौरे से देश के क्रिकेट प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा है। और वहीं इस बीच नेपाल के रोहित पौडेल आगामी महीने में भारत में होने वाले ICC पुरुष T20 विश्व कप में 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहां टीम की घोषणा हो चुकी है। वे नेपाल के सबसे सीमित और रणनीतिक रूप से कुशल बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के T20 विश्व कप 2026 के बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की याचिका खारिज कर दी है। BBC ने सुरक्षा कारणों के चलते T20 विश्व कप के लिए भारत आने से मना किया है। हालांकि दोनों संस्थाओं के बीच हुई वर्चुअल बैठक में ICC ने कहा कि BCB के पास अंतिम समय में मैच स्थानांतरित करने का कोई वैध कारण नहीं है। अब बात मलेशिया ओपन की, जहां PV सिंधु और चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग के अगले दौर में पहुंच गई है। सिंधु ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ यून को सीधे सेटों में 21-13, 22-20 से हराया। 8वीं वरीयता प्राप्त सिंधु का मुकाबला कल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। वहीं सात्विक और चिराग की जोड़ी ने चीनी ताइपे के यांग पो हुसुआन और ली झे हुए को 21-13, 21-15 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पिछला सत्र हमारा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस सत्र की शुरुआत अच्छी है।
जी हाँ, बिल्कुल, पीवी सिंधु के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि उन्होंने सीधे गेम्स में मैच जीता है, लेकिन वो मैच चला 51 मिनट और दूसरा जो गेम था वो 22-20 से जीती। तो और शुरुआत में इनफैक्ट पहले गेम में वो काफी पिछड़ रही थी, लेकिन उन्होंने वापसी कर ली। अच्छी बात यह है कि वो दोबारा से बैडमिंटन सर्किट में वापस आई हैं और काफी महीने का ब्रेक रहा है। पीवी सिंधु एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए मेडल जीते हैं और हमेशा जो बैडमिंटन प्रेमी हैं वो चाहते हैं उनको बैडमिंटन कोर्ट पर सक्रिय देखना। इनके साथ साथ आयुष शेट्टी ने कल ली जी जिया को पराजित किया था, कल के कार्यक्रम में इसका जिक्र हुआ भी था, जो पेरिस ओलंपिक खेलों के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। आयुष शेट्टी ने भी अपना मैच जीता था। यहाँ आज एक इंटरेस्टिंग जरूर मैं खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इंडिया ओपन बैडमिंटन का आज ड्रॉ आ गया है जो अगले सप्ताह भारत में राजधानी दिल्ली में होने वाला है आईजी स्टेडियम में, और वहां पर लक्ष्य सेन पहले ही दौर में आयुष शेट्टी से खेलते हुए नजर आएंगे। तो जो चार सिंगल्स प्लेयर होंगे, इंटरेस्टिंगली पहले ही दौर में एक भारतीय खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाएगा, और किदांबी श्रीकांत फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन और एचएस प्रणॉय वो सिंगल्स में खेलेंगे। लेकिन यहाँ मलेशिया ओपन टूर्नामेंट, ये सुपर 1000 टूर्नामेंट है, हाईएस्ट कैटेगरी का टूर्नामेंट है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि पिछले साल पिछले चार साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 2025 वाज द ओनली ईयर जहां पर इस जोड़ी ने कोई खिताब नहीं जीता। फाइनल पहुंचे, सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन टाइटल नहीं जीत पाए। तो उस लिहाज से ये टूर्नामेंट मलेशिया ओपन भी आसान तो बिल्कुल नहीं है, ड्रॉ बिल्कुल भी आसान नहीं है, इंडिया ओपन अगेन विल नॉट बी ईजी। लेकिन जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फोरम पे जब हम जाते हैं एक भी मैच जीतना आसान नहीं है। पीवी सिंधु का मैं जिक्र कर ही रहा हूं, जो भी मैच खिलाड़ी जीतते हैं अच्छे हैं, कैलिबर है, थर्ड सीडेड पेयर है सात्विक और चिराग का, उम्मीद करेंगे कि जो आगे के राउंड है कम से कम सेमीफाइनल तक तो उनको खेलना चाहिए।
बिल्कुल, और शिवेंद्र खास बात यह है कि दोनों के दोनों, यानी कि अगर हम सिंधु की बात करें या फिर हमारी डबल्स जोड़ी की बात करें, चोट के बाद वापसी की है उन्होंने, और ना ही सिर्फ वापसी की है बल्कि सत्र की शुरुआत जीत के साथ की है, और ये सत्र दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अभी हम लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी की बात कर रहे थे जो इंडिया ओपन में खेलेंगे, लेकिन कल मलेशिया ओपन में भी वो पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले खेलेंगे, जहां उनका सामना, लक्ष्य का सामना हांगकांग के ली चुकी से होगा और आयुष चीन के शी युकी का सामना करेंगे। भारत के अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। बर्मिंघम में महिलाओं की अंडर 19 वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत को फ्रांस की लोरेन बल्टायान से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अनाहत ने कल सेमीफाइनल में मिस्र की मलिका अल कराक्सी को हराया था, और 17 साल की अनाहत ने 11-8, 11-7, 11-9 से जीत दर्ज कर पहली बार इस वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी।
कोई बात नहीं, निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन अनहत सिंह जैसी खिलाड़ी हैं, लगातार अपने कार्यक्रम में उनका जिक्र करते रहते हैं, उनके परफॉर्मेंस की लगातार चर्चा होती रहती है, और ब्रिटिश ओपन जैसा कल भी जिक्र हुआ था कि 100वां संस्करण है और बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, और अनहत ने पिछले साल अंडर 17 में वहां पर टाइटल जीता था, 2023 में अंडर 15 टाइटल जीता और 2019 में अंडर 11 टाइटल जीता था, तो तीन टाइटल पहले वो जीत चुकी थी। एक और खास बात थी यहां पर जया कि उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के क्रम में इजिप्ट की तीन खिलाड़ियों को हराया था, और जिस खिलाड़ी से वो हारी हैं वो यूरोपियन चैंपियनशिप में मेडलिस्ट हैं। तो आसान, जैसे मैं कह रहा हूं कि आसान तो कहीं भी नहीं है, लेकिन कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो अगर खिताब जीत जाती तो बढ़िया, एक बेहतरीन शुरुआत होती, अभी भी उतनी खराब शुरुआत नहीं है
जी। अब बात हीरो हॉकी इंडिया लीग की, जहां महिला खिलाड़ियों ने, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया है। आज झारखंड के रांची में मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सूरमा ने फाइनल में जगह बना चुकी श्राची बंगाल टाइगर्स को कड़े संघर्ष में 3-2 से पराजित किया। हालांकि यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से औपचारिक था, क्योंकि सूरमा पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और टाइगर्स ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके बावजूद दोनों टीमों ने पूरे जोश और प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ खेल दिखाया। मैच का फैसला अंतिम क्षणों तक अधर में रहा और दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिला, और इस जीत के साथ जेएसडब्ल्यू सूरमा ने टूर्नामेंट में अपना अभियान सम्मानजनक तरीके से समाप्त किया, जबकि श्राची बंगाल टाइगर्स अब फाइनल मुकाबले की तैयारी में है।
ये भी पैराडॉक्स है कि एक टीम जो फाइनल में पहुंच चुकी वो आज अपना अंतिम मैच हार गई, जो टीम खिताब की दौड़ से बाहर हो चुकी थी उसने जीत के साथ समापन किया, तो जिसने जीत के साथ समापन किया उनके लिए अच्छा, फाइनल के लिए उनके लिए एक चेतावनी टाइप की है टाइगर्स के लिए।
बिल्कुल, और श्रोताओं अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद।
थैंक यू जय।
इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।